Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो मंत्र हम लोगों का नौवां चल रहा है. यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतद्. जहां से सूर्य उदित होता है और जहां वह अस्त हो जाता है. तम देवाः उस प्राणात्मा में सर्वे देवाः अर्पिताः संपूर्ण देवता अर्पित हैं और तद उ नात्येति कश्चन ना अति एति उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है. उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है. यही वह ब्रह्म है तो जिसमें से प्राणों का उदय होता है. अब पहला जो इसमें कहो दृष्टांत दिया है और कहो दार्ष्टांतिक ही है तो इसमें कहा सूर्य को लिया गया. अभी तक बहुत सी चीजें ली गई थी आप जानते हैं. अदिति को लिया था, प्राणों को लिया था, तपसः पूर्वम अजायत, तो अनेक हिरण्यगर्भ इत्यादि अनेक वस्तु ली गई. अब कहा कि सूर्य पर आ गए जहां से सूर्य का उदय होता है. कल वैसे इस मंत्र का स्पर्श करे हैं हम लोग. तो आकाश में सूर्य का उदय होता है आप जानते हैं. थोड़ा सा समझ में सरल है, कुछ कठिन नहीं. तो आप देखते हैं आकाश में सूर्य का उदय हुआ और आकाश में सूर्य का अस्त हुआ. किंतु यदि आकाश में बैठकर आप देखें, कहीं रॉकेट से उड़कर जाएं ऊपर तक और जाकर देखें तो सूर्य का ना उदय होता है ना अस्त होता है. तो यहां श्रुति बता रही हैं, तो जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि विसंगतियां हैं हमारे इनके शास्त्रों में विसंगतियां हैं. लेकिन विसंगति की बात नहीं होती है, उसको समझना पड़ता है. इसलिए आचार्यों ने भाष्य किए और अनेक प्रकार से समझाया. वेदों के मंत्रों को भी सायणाचार्य आदि ने समझाया है और हमारे तो भगवान भाष्यकार हैं ही जो हम लोगों को ले चलते हैं. तो कहा कि आकाश में सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों चमकता रहता है. दूसरे शब्दों में कहो तो हर क्षण उदय होता है और हर क्षण अस्त होता है. फिर ये उदय और अस्त की बात क्यों कही जा रही है? और बड़ा भारी ज्योतिष का विज्ञान है, उसमें सूर्य ग्रहण भी होता है. हम लोगों को पहले से सिखा दिया जाता है, संस्कार डाले जाते हैं तो हम उसका पालन भी करते हैं. तो आकाश में जाकर आप देखेंगे अंतरिक्ष की दृष्टि से तो हर समय ग्रहण है. हर समय ग्रहण है तो सूतक है हर समय, क्योंकि कोई न कोई छाया सूर्य पर आती रहती है. तो इतने वो तो केवल पृथ्वी की छाया से हम लोग मानते हैं, तो कोई न कोई छाया आती है. तो तब ये बात क्यों कही जा रही है? तो कहा कि हम जब अपनी आंख से देखते हैं, यहां आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं. तो कहा जब हम अपनी आंख से देखते हैं और उस आंख की दृष्टि से हम लोग कहते हैं सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ. तो आंख की दृष्टि से दिखे तब सूर्य अस्त और आंख से दिखे तब सूर्यास्त. तो आंख क्या है? तो इसका आंख हमारी अध्यात्म है. तो अधिभूत के दर्शन के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है. बिना हमारे चैतन्य के सूर्य की भी सिद्धि नहीं होती. लेकिन सूर्य को हम देवता कहते हैं और अधिदैव रूप में उसकी उपासना भी करते हैं. तो वैसे आप बाहर की दृष्टि से देखें तो सूर्य का उदय और अस्त वह कहां हो रहा है? दिक् तत्व में. जो दिक् तत्व है आकाश भी कह सकते हैं आप उसको, तो दिक् तत्व में हो रहा है। तो दिक् तत्व किसकी उपाधि है? दिक् तत्व जिसकी उपाधि है उसी में सूर्य का उदय और अस्त हो रहा, यथा करके उसको लखाया जा रहा है, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को उसको लखाया जा रहा है, क्योंकि उस परब्रह्म के परमात्मा के संकल्प में ही यह कल्पित है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और हमारे तो नैऋत्य आग्नेय वायव्य ये सब ये भी दिशाओं में आते हैं, और अंदर बाहर ये सब कहाँ है? बाहर भीतर ये सब है, और ये हमारे अंदर, हमारे अंदर अभी छोड़ दो, अभी दिक् तत्व में है, तो ये दिक् तत्व में ही कल्पित है। तो दिक् तत्व में, दिक् तत्व जो है उसमें ही ये सब दिशाएं कल्पित हैं, उसी को दिशाओं का तत्व कहते हैं। तो ये एक बाह्य दृष्टि से कल बताया था, अंदर और बाहर कुछ नहीं होता है, हमारा मन ही हमेशा देखता है और वही कल्पना बैठाता है, क्योंकि मन ने इस देह रूप उपाधि को महत्व दे रखा है, इसलिए ये जो चर्म है, इस चर्म के अंदर की जो पोटली है, हड्डी मांस रक्त पीव विष्ठा आदि की मल मूत्र की जो ये पोटली है, उसको हम महत्व दे देते हैं, और उसको लेकर हम अंदर बाहर कहते हैं। आंख बंद करते हैं तो कहते हैं अंदर, और आंख खोलते हैं तो कहते हैं बाहर। तो ये आंख देखती है, तो एक आंख है और एक इससे दिखने वाला रूप है, और आंख के भीतर अध्यात्म है ना आंख, तो इसके भीतर एक सूर्य बैठा है, वो अध्यात्म है। तो यह जो आंख, क्योंकि सूर्य को हम लोग नेत्र का, यह चाक्षुषोपनिषद एक है हमारे यहाँ, तो नेत्र का अनुग्राहक देवता मानते हैं। यदि किसी की अधिदेव में यदि किसी की आंख कमजोर है तो उसे सूर्य की उपासना बताई जाती है। तो आंख है, इसे दिखने वाला रूप है, और आंख के भीतर बैठा हुआ सूर्य है। तो आंख अध्यात्म है, और जो रूप दिखता है, सूर्य रूप जो दिखता है, वह अधिभूत है, और उसकी हम अधिदैव रूप में भी उपासना करते हैं। तो सूर्य कहाँ है? सूर्य दिक् तत्व में है, और दिक् तत्व, तो दिक् तत्व वो आपके चैतन्य में है। तो उपाधिवान जो चैतन्य है, आकाश उपाधि युक्त जो चैतन्य है, उसी में सूर्य का उदय और अस्त हो रहा है। तो काल की दृष्टि से आप विचार करते हैं तो सूर्य का जन्म मरण मानते हैं, और क्रिया की दृष्टि से विचार करते हैं तो सूर्य का गमनागमन मानते हैं, इसलिए तो उदय अस्त मानते हैं ना। और वस्तु की दृष्टि से विचार करते हैं तो सूर्य की दृश्य मानता मानते हैं, आप एक साथ ही मान लेते हैं तीनों ना। वो तो जब समझाया जाता है तो विश्लेषण कर करके और बताते हैं, लेकिन यह ये भी हम मानते हैं कि ईश्वर के संकल्प में हो रहा है, भले जाने न जाने, लेकिन ये मानते हैं कि ईश्वर के संकल्प में हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि समय पर सूर्य का उदय होता है और समय पर सूर्य का अस्त होता है, तो वह ईश्वर के संकल्प में हो रहा है। तो कहां पहुंचेंगे कि परब्रह्म परमात्मा में ही यह सब प्रतीत होता है। तो जो परब्रह्म, जिस परब्रह्म परमात्मा में यह संकल्प, यह ईश्वरीय संकल्प भी कल्पित है, उसका विचार करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति। उसका विचार करो, जिस परब्रह्म परमात्मा में ये सब, ये कल्पित संकल्प, कल्पित सूर्य चल रहा है, क्योंकि अन्य श्रुतियां कहती हैं भयादस्माद् वातः पवति, ये कहा गया कि सूर्य आदि सब उसी के नियमन से, उसके अनुशासन से चल रहे हैं, उसके ईशन से, और वह जो ईशन करने वाला है वह ईश्वर, और वह ईश्वर में क्या है कहा संकल्प, तो संकल्प क्या है परमात्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य की दृष्टि से देखें तो वह कल्पित है, क्योंकि एतद वही तद जब लग जाता है, कल बताया था कि मंत्र वही होते हैं, लेकिन जब एतद वही तद लग जाता है तो परब्रह्म की ओर दिखाने लगते हैं। तो अब ये बात कही गई कि ये जो आंख है इसमें देखने की वृत्ति कहां से आई, आप देखते हैं सूर्य को या किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो तदाकार वृत्ति होती है, नेत्र की तदाकार वृत्ति होती है, और वह मन को लाकर अर्पित करती है, और मन तब उसे स्वीकृति देता है, और तब बुद्धि में यह अभिमानात्मिका एक वृत्ति बनती है कि हमने यह देखा, हमने क्या देखा, कहा यूरोप देखा, इंग्लैंड देखा, अमेरिका देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन अपने आप को देखा क्या, देखने वाले को देखा क्या, सब देखा, अधिभूत देखा, अध्यात्म देखा, अधिदैव देखा, लेकिन देखने वाले को देखा क्या। तो वृत्ति का उदय कहाँ से होता है और ये देखने की वृत्ति कहाँ से आती है और ये देखने की वृत्ति लीन कहाँ होती है, यतश्चोदेति सूर्यो, और जहां ये वृत्ति उदय होती है देखने की वृत्ति, सूर्य आंख को ही लेकर चलना भी है तो समझ में आ जाएगा, और जहां जाकर लीन होती है वह अध्यात्म सूर्य है, उसको अध्यात्म सूर्य कहेंगे, एक सूर्य देवता है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, गायत्री के मंत्रों से उपासना करते हैं, वो अधिदैव सूर्य है, वो अधिदैव सूर्य है, क्योंकि वैदिक जो प्रक्रिया है उसमें अधिभूत अधिदैव अध्यात्म तीनों का विचार किया जाता है, और इसके पीछे इसके परे जो अधिष्ठान तत्व है उसको लखाया जाता है, जिसको आप लोग त्रिपुटी कहते हैं। तो त्रिपुटी को एक विशेष पद्धति से हमारे यहाँ उपनिषदों ने उसे दिखाया, ठीक है, और आंख से जिसे आप देखते हैं वह आधिभौतिक सूर्य है, तो आधिभौतिक सूर्य है जिसे आंख से देखते हैं, अधिदैविक सूर्य है जिसकी आप उपासना करते हैं सूर्य विद्या से, और आध्यात्म सूर्य है जो आपकी आंखों के पीछे बैठकर आंख को प्रकाश देता है, वह अध्यात्म सूर्य है। तो कहा कि जो इसका अधिष्ठान है ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसी में ये नेत्र की वृत्ति अर्थात अध्यात्म, ये सूर्य देवता अर्थात अधिदैव, और ये सूर्य का रूप बाहर जो प्रकट हो रहा है अधिभूत, ये त्रिपुटी जहां हो वह जिसमें हो, जिस ज्ञान स्वरूप में हो, जिस चैतन्य में हो, उसको यत कहके वह कहके लखाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे जब भगवान भी अवतार लेते हैं, ये सूर्य क्या है, भगवान है, एक अवतार है, तो अवतार लेते हैं तो दूसरे बोलते हैं कि उनका अधिभूत रूप हो ही नहीं सकता, और हम क्या कहते हैं हमारी सनातन वैदिक धर्म की पद्धति से कि उनका अधिभूत रूप भी हो सकता है, होता है। तो इसलिए कहा अयोध्या में जन्म लिया, फिर चले चित्रकूट, आए यहाँ, आए वहां, गए वहां लंका में जाके रावण का वध किया, और अभी तक उसके प्रमाण मिलते हैं उसके प्रमाण, और कहा कि नहीं उसको नकार दो, तो नकारने की आवश्यकता नहीं, हमारे अधिभूत अधिदैव अध्यात्म का विचार है। तो ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है जिसमें त्रिपुटी दिख रही है, तो सूर्य क्या है, सूर्य माने त्रिपुटी रूप की एक त्रिपुटी है, तो उस परमात्मा में वह दिख रही है। तो त्रिपुटियां, समस्त त्रिपुटियों को ले लो, इसका विचार हम लोग कर ही चुके जितनी भी। लेकिन सूर्य का जब नाम लेते हैं तो रूप की, विशेष रूप से रूप की त्रिपुटी को लेना चाहिए। तो सूर्य सर्पे उत्सर्पणात्, ऐसी एक नैरुक्त व्युत्पत्ति है। तो उसमें क्या कहा गया कि सूर्य क्या है, कहा कि जो चलता रहता है, अथवा ऐसे कहो कि जो आंख के रूप में उछल पड़ता है, वो सूर्य है, अर्थात सामने प्रकट हो जाता है, उसे सूर्य कहते हैं। और सूते इति सूर्य, सूयते इति सूर्य, दोनों प्रकार सूं धातु से। तो कहा कि जो उत्पत्ति करता है, बोलते नहीं है कि सूर्य थोड़ा सा पास आ जाए तो सारी सृष्टि, ये आपकी पृथ्वी, पृथ्वी की सृष्टि भस्म हो जाएगी, और सूर्य थोड़ा दूर चला जाए तो सब ठंडा हो जाएगा, ऐसे बोलते भी हैं। तो कहा कि वह उत्पत्ति करता है, इसीलिए जो गायत्री की उपासना है उनको सावित्री भी कहते हैं। सविता देवता, सूर्य को क्या कहते हैं, सविता देवता, अर्थात संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, उनकी शक्ति है सविता गायत्री, उनकी शक्ति। तो सामने प्रत्यक्ष देवता के रूप में प्रकट होते हैं आपको प्रकाश देने के लिए। और लोग क्या करते हैं, आप लोग नहीं करते, आप तो सत्संगी हैं, कहा ओढ़ ओढ़ के चद्दर और सोते रहते हैं। अब पहले इस देश की यह पद्धति थी कि सूर्योदय के पहले उठ के और स्नान आदि करके और सूर्य का स्वागत करो, उनका स्वागत करना है। अब यह पद्धति खत्म हो गई, खत्म कर दी गई, क्योंकि हम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो गए, इसलिए वह खत्म कर दी गई। तो जो सूयते इति सूर्य, और इतना ही नहीं, सूर्यते प्रेरियते इति सूर्य, जो प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरणा देने वाले हैं, प्रेरियते वायुना, अथवा वायु के द्वारा प्रेरित होते हैं, वायु माने प्राण, प्राण माने आपने सुना था हिरण्यगर्भ, तो प्राण से प्रेरित होते हैं, हिरण्यगर्भ से प्रेरित होते हैं। और जिस प्राण में, जिस हिरण्यगर्भ में, जिस महत्तत्व में, जिस ईश्वर के संकल्प में, ईश्वर के संकल्प में, प्राण हिरण्यगर्भ महत्तत्व, ये सूर्य जन्मते हैं और मरते हैं, अर्थात उदय और अस्त होता है। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीन प्रकार के सूर्य जन्मते और मरते हैं। लेकिन जो सूर्य तत्व जिनको हम अधिदैव मानते हैं, वो ब्रह्म तत्व से अभिन्न होते हैं। जब उनकी उपासना करते हैं तो ब्रह्म तत्व से अभिन्न होते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार करता होते हैं। हमारे पंचदेव उपासना में सूर्य की भी उपासना, तो उसके कर्ता होते हैं। तो लेकिन यहाँ तो उपासना की बात नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म तत्व को लिखाया जा रहा है, एतद् वै तत्, तो जिसमें सूर्य का उदय अस्त हो रहा है। तम देवाः सर्वे अर्पिताः, तो व्यवहार में तम देवाः सर्वे अर्पिताः, क्योंकि वह ये चक्षु देवता हैं, चक्षु के, चक्षु प्रकाश की, प्रकाश को दिखाते हैं, और समष्टि में चक्षु लोआ, केवल व्यष्टि में नहीं लो। आपको पहले ही बताया था कि इन मंत्रों का जब विचार करना है तो व्यष्टि समष्टि का विचार करना है, कहा था ना, व्यष्टि समष्टि का भी व्यष्टि से जोड़ के, समष्टि से जोड़ के विचार करना है। और यहाँ विचार ही तप है, दूसरी बात, यह पूर्वम तपसो जातम, वहां ये बात बताई थी, ये मंत्र जो आया था, यह पूर्वम तपसो जातम, विचार ज्ञान ही तप है। और आपको कैसे, दो बात, तीसरी बात, आपको कैसे इस सृष्टि की प्रतीति हो रही है, उस दृष्टि से सृष्टि का निरूपण है, तीसरी बात। और चौथी बात कि ज्ञान से अतिरिक्त, परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये चार बातों को ध्यान में रखकर और तब विचार करना है। ये एतद वही तद, इसका विचार इस प्रकार से करना है। तो तम देवा सर्वे अर्पिता, दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि सब देवता उसमें अर्पित हैं। तो व्यवहार में भी आप देखते हैं कि नेत्र सामान्य जहां आप बैठे हैं वहां से विचार को ले जाना चाहिए। तो आपके आप जब देखते हैं कि नेत्र जब देखते हैं तो नेत्र प्रमुख होते हैं, उसके अनुसार पांव चलते हैं। पांव की देवता उपेंद्र है, नेत्र की देवता सूर्य भगवान और पांव की देवता उपेंद्र अर्थात विष्णु भगवान, जो उपेंद्र हुए और त्रिविक्रम हुए। ये पुराण को नहीं लाना, समझने के लिए ला रहे हैं, है ना। उसके देवता उपेंद्र हैं। और हाँ, जब आप नेत्र से देखते हैं तब किसी चीज को पकड़ते हैं अथवा हाथों से काम करते हैं, तो हाथ के देवता कौन है? इंद्र है। इसी प्रकार से सब देवताओं को लगा लेना। तम देवाः सर्वे अर्पिताः, अर्थात पांवों से जो आप गति करते हैं, हाथ से जो आप स्पर्श भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, वो सब कर्म आदि कर्म के देवता है ना इंद्र, तो वो सब किसको अर्पित है? कहा नेत्रों को अर्पित है। इसलिए नेत्र के देवता जो सूर्य हैं, उन्हें महत्ता दी गई है। तम देवाः सर्वे अर्पिताः, संपूर्ण देवता अर्पित हैं। एक बात, और दूसरा देवता से यहाँ आत्मदेव लेना। व्यवहार की बात तो इस प्रकार से ले ली और वहां पर आत्मदेव यहाँ पर लेना। तो आत्मदेव जब आप लेते हैं तो उसमें सारे देवता उस चैतन्य में ही सब देवता अर्पित हो जाते हैं उसी में। तो ये क्योंकि अब यहाँ पर जो सूर्य देवता है तो उसमें अर्पित करना है, तो उनको कैसे समझेंगे? अधिदैव रूप से, तो गायत्री मंत्र, जो गायत्री की उपासना करते हैं, जो संध्या वंदन करते हैं, उनको बात थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि जियो यो न प्रचोदयात्, जो बुद्धि के पीछे बैठकर और बुद्धि को प्रेरित करने वाला है वही सामने सूर्य रूप में खड़े हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो धियो यो न प्रचोदयात्, तो जो प्रकाश के देवता हैं, तो वो प्रकाश के देवता परब्रह्म परमात्मा ही है, जो बुद्धि के भी, यो बुद्धे परतस्तुसा, एक कठोपनिषद में कहा गया, गीता में भी कहा गया और कठोपनिषद में भी बुद्धे आत्मा महान परा ऐसे करके बताया। तो बुद्धि से भी जो परे है वह परमात्मा, तो उस परमात्मा तम देवाः सर्वे अर्पिताः, जो बुद्धि के भी पीछे रहकर उसको प्रकाशित करता है, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है, तो वह बुद्धि से भी सूक्ष्म परे, परे का अर्थ होता उससे सूक्ष्म, उसको पोषण करने वाला, उससे उससे परे, उससे उत्कृष्ट श्रेष्ठ। तो पर जब शब्द आता है शास्त्रों में तो आप समझना श्रेष्ठ उत्कृष्ट और सूक्ष्म, और जिससे अधिक सूक्ष्म है उसका वह पोषण करता है, उसको पर विपर्ति, तो उसका वह पोषण भी करता है। तो वहीं पर एक मंत्र भी आता है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, एक मंत्र आता है संध्या वंदन में, जो करते होंगे वो जानते हैं। तो कहा सूर्य आत्मा जगतः तस्थुखश्च, तो सूर्य क्या है? कहा आत्मा है, जगतस्तस्थुखश्च। तो तम देवाः सर्वे अर्पिता, तो वह जो वह आत्मा है उसमें जगत और अर्थात जड़ और चेतन, ये देवता, क्योंकि जब हम जगत को देखते रहते हैं तो हमारी वृत्ति जड़ में रहती है और ये संपूर्ण सृष्टि चेतन है, इसको हम समझ नहीं पाते। तो वैदिक युक्ति यह है कि उसमें देवता की एक देवता का चिंतन, देवता की शक्ति ये दी गई, तो देवता की जो शक्ति दी गई, तो देवता कैसे है? तो चेतन है। तो आप पूर्ण चैतन्य को तो नहीं पहुंचे, अर्थात आत्मा ब्रह्म की एकता को तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं व्यवहार में भी आपकी बुद्धि में चेतन आ गया, ये युक्ति है। आप ईश्वर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वह चैतन्य आ गया। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्चा, अर्थात सूर्य इस जड़ का, जड़ जगत का और चेतन का, दोनों का वह आत्मा है। आप कहते हैं ना कि कैसी है सृष्टि, तो कहा जंगम भी है और जड़ भी है, चर और अचर दोनों का आत्मा सूर्य है और वही बुद्धि का प्रेरक है और उसी में सब अर्पित है। तो दोनों प्रकार से लीजिए, तो जब बुद्धि के प्रेरक हैं, धी के प्रेरक हैं, तो उनके प्रति सब अर्पित हो जाएंगे। तो आपके, आप जो भी हाथों से करते हैं, जो भी वाणी से बोलते हैं या स्वाद लेते हैं, जो भी नाक से सूंघते हैं, जो भी कान से सुनते हैं, वो सब के सब बुद्धि के, बुद्धि की शक्ति से, दृष्टि शक्ति से या बुद्धि की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति उसमें ओतप्रोत है। अर्पिताह का अर्थ है उसमें ओतप्रोत है, उससे वह पृथक नहीं है। तो वह सब में अनुस्यूत है। आप जो भी कर्म करते हैं तो कहते हैं कि बुद्धि है उसमें, अहंकार है, इसलिए कोई कर्म अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो आपके साथ वह लगा रहता है, क्योंकि उसको आप कर्म को सूक्ष्म में ले जाते हैं। कर्म इतना स्थूल नहीं रहता है कि बाहर होके खत्म हो गया, होता होगा ज्ञानी का महाराज, लेकिन सामान्य रूप से तो हम उसमें अपनी बुद्धि तक उसको ले जाते हैं। और पूर्ण मनोयोग से कर्म वही होगा जो बुद्धि पूर्वक होगा, बुद्धि के साथ होगा, और उस सब में यह दृष्टि, दृष्टि अर्थात बुद्धि, यह दृष्टि इसमें अनुस्यूत है। जैसे वस्त्र में धागा अनुस्यूत है। सर्वे अर्पिताह से ये मत कहना, ये नहीं सोचना, क्योंकि पूर्व में हम लोग हविष्य मत भी, उसमें हविष्य दो, तो हम उसको शब्दशः ले लेते हैं कि लेकर और अग्नि में अर्पण करो। तो इस प्रकार से शब्दशः लेने की आवश्यकता नहीं, उसका तात्पर्य समझना पड़ता है, क्योंकि लखाया जाता है, मंत्र हमेशा लखाते हैं। मंत्र केवल शब्द के द्वारा ही नहीं बोलते, अर्थ के द्वारा भी बोलते हैं। और अर्थ कहाँ से प्राप्त करेंगे आप? अर्थ सत्संप्रदाय परंपरा से प्राप्त करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करेंगे। मनमानी वहां नहीं चलेगी कि यूनिवर्सिटी में बैठकर और पुस्तकालय में बैठकर और कहा मंत्रों की, अब मंत्रों का अर्थ बताया जा रहा है, इसलिए पाश्चात्य जितने विद्वान हैं वो अर्थ नहीं समझ पाए, इस देश में ही नहीं समझ पाए। हम लोग तो समझ रहे हैं भगवान भाष्यकार के अनुग्रह से,